15 नवंबर मंगलवार, दिन भर के सभी सुनने वालों को निखिल रंजन का नमस्कार। भारत में नोटबंदी का आज सातवां दिन, बैंकों और एटीएम के बाहर लंबी लंबी कतारें, नकदी के संकट से जूझ रहे हैं लोग।
नंबर नहीं आ रहा, मैं जा रहा हूँ, मुझे को लग रहा है कि 5 बजे तो एंट्री होगी जाके हमारी, जब मैं जहाँ 6 बजे का आया हूँ फिर भी मैं वापस जा रहा हूँ।
सुबह 4:30 बजे से लाइन में लगा, अभी तक नंबर का पता नहीं है, परेशानी हुई है, ना नाश्ता करके आया ना कुछ खाना पीना।
दुकानदारी पे सबसे ज्यादा असर पड़ा क्योंकि लोग यहाँ पे पुराने नोट लेके आ रहे हैं।
नोटबंदी पर सुप्रीम कोर्ट से भी नहीं मिली राहत, विपक्षी दल सरकार को घेरने में जुटे। बिहार के सेनारी हत्याकांड के दोषियों को जिला अदालत ने सुनाई सजा।
ये केस जो है से रेयर ऑफ द रेयरेस्ट केस के अंतर्गत आता है, उसमें 10 लोगों को बिल्कुल दंड की सजा सुनाई।
खबरें होंगी और भी, लेकिन पहले प्रमुख विश्व समाचार।
बीबीसी समाचार हरिता कांडपाल से। 500 और 1000 के नोट को बदलने वालों की उंगली पर जल्द ही ना मिटने वाली स्याही लगाई जाएगी। आर्थिक मामलों के विभाग के सचिव शक्तिकांत दास ने कहा है कि कुछ लोग बार बार नोट बदल रहे हैं, इसलिए ये कदम उठाया जा रहा है। शक्तिकांत दास ने बताया कि लोगों को परेशानी से बचाने के लिए बैंकों में माइक्रो एटीएम भी लगाए जा रहे हैं। इस बीच सुप्रीम कोर्ट ने 500 और 1000 के नोट बंद करने के सरकार के फैसले पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है। कल से शुरू हो रहे संसद के शीतकालीन सत्र से पहले सर्वदलीय बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सभी दलों से संसद के अंदर और बाहर काले धन के मुद्दे पर साथ आने की अपील की है। इस बीच विपक्षी दलों की बैठक के बाद कांग्रेस नेता गुलाम नबी आजाद ने कहा कि विपक्ष नोटबंदी के को वापस लेने के पक्ष में नहीं है, बल्कि इससे मची अफरा तफरी के विरोध में है। हांगकांग में एक अदालत ने आज़ादी के समर्थक 2 सांसदों की सदस्यता को आधिकारिक तौर पर अयोग्य करार दिया है। सिक्टस लेउंग और वाई चिंग ने पिछले महीने चुनाव जीतने के बाद शपथ लेते वक्त चीन के साथ निष्ठा रखने से इनकार कर दिया था। इन दोनों ने हांगकांग को एक राष्ट्र बताया और चीन के लिए अपमानजनक शब्दों का इस्तेमाल किया था। आज़ादी के समर्थक यंग एस्पिरेशन आंदोलन से जुड़ी सांसद वाई चिंग ने ये कहा। अदालत के फैसले का मतलब है कि सरकार मुकदमा जीत गई है। सिक्टस लेउंग और मेरी संसद सदस्यता तुरंत प्रभाव से खत्म कर दी गई है। अब हम और हमारे लोग संसद परिसर में प्रवेश नहीं कर सकेंगे, ये आज का फैसला है। सिक्टस लेउंग और मैं 20,643 और सितंबर में 30,000 से ज्यादा वोटों से जीते थे। अगर अदालत को हमारी सदस्यता इस तरह खारिज ही करनी थी तो सब समझ सकते हैं कि हम किस तरह के समाज में रहते हैं। ये थे वाई चिंग के शब्द, आप सुन रहे हैं बीबीसी समाचार। रूस ने सीरियाई तट पर तैनात विमान वाहक पोत एडमिरल कुज़नेत्सोव से पहली बार हवाई हमले शुरू किए हैं। रूस के रक्षा मंत्री ने कहा कि इदलिब और होम्स में जिहादी गुटों को इस बड़े अभियान में निशाना बनाया जा रहा है। इसमें क्रूज मिसाइलें भी इस्तेमाल की जा रही हैं। वहीं 3 हफ्ते बाद एलेप्पो शहर में सीरियाई सेना ने हवाई हमले शुरू किए हैं। इससे पहले एलेप्पो में पिछले 24 घंटों के भीतर 3rd अस्पताल पर बमबारी की भी खबर है। रूस के आर्थिक विकास मंत्री एलेक्सी येल्युकाएव पर रिश्वत लेने का आरोप लगाया गया है। 1991 में तख्तापलट के बाद रूस में वे पहले कैबिनेट मंत्री हैं जिन्हें गिरफ्तार किया गया है। आधिकारिक जांच के मुताबिक उन्हें एक स्टिंग ऑपरेशन में $20,00,000 की रिश्वत लेते पकड़ा गया था। यह सौदा सरकारी तेल कंपनी रोजनेफ्ट के कुछ हिस्से के निजीकरण का था। उनकी प्रवक्ता ने उनकी गिरफ्तारी की खबर पर आश्चर्य जताया है। बीबीसी समाचार।
बीबीसी रेडियो पर दिनभर में आपका स्वागत है, आज आपके साथ निखिल रंजन। पूरा भारत इस वक्त जो है नकदी की समस्या से जूझ रहा है। नोटबंदी लागू हुए आज एक पूरा हफ्ता हो गया और लोगों की मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। क्या गांव, क्या शहर, जिधर नजर दौड़ाइए, स्कूल, कॉलेज, होटल, दुकान, दफ्तर, खेल के मैदान, सोशल मीडिया, हर जगह चर्चा हो रही है तो नोटबंदी की, मजाक किए जा रहे हैं तो नोटबंदी को लेकर। पूरा भारत नकदी के जुगाड़ में लगा है, कुछ निकालने के लिए तो कुछ जमा करने के लिए, और कुछ लोग इनसे हो रही परेशानियों की चर्चा में लगे हैं। अलग अलग मंचों पर पत्रकार अपनी कलम और कैमरे और रिकॉर्डर से दिखा सुना रहे हैं, दूसरी तरफ नेता लोग भी हैं जो अपने भाषणों और प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए अपनी बात कह रहे हैं। इन सबके बीच एक बात ये हुई है कि नोटबंदी को लेकर सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका पर सुनवाई के बाद सरकार से हलफनामा दायर करने को कहा गया है। सुप्रीम कोर्ट ने पूछा है कि सरकार लोगों की मुश्किल दूर करने के लिए क्या कर रही है, साथ ही ये भी कि बैंकों से पैसा निकालने की जो सीमा है वो बढ़ाई क्यों नहीं जा रही। नोटबंदी के मामले में क्या कुछ हुआ, सुनिए विनीत खरे से।
देश भर में नोट बदलवाने बैंकों में उमड़ रही भीड़ और इससे फैल रही अफरा तफरी को देखते हुए सरकार ने फैसला लिया है कि नोट बदलने वालों की उंगलियों में वोट देते समय इस्तेमाल की जाने वाली स्याही लगाई जाएगी। इसके बारे में बताते हुए वित्त सचिव शक्तिकांत दास ने मंगलवार को कहा,
द सेम पीपल आर कमिंग बैक अगेन एंड अगेन।
वित्त सचिव शक्तिकांत दास कह रहे थे, बार बार कुछ ही लोग बैंकों में नोट बदलने जा रहे हैं। हमारे पास ऐसी भी रिपोर्टें हैं कि कुछ लोग अपने काले धन को भी इस तरह बैंकों में जमा करने की कोशिश कर रहे हैं। इसलिए जैसे चुनाव में मतदान के समय उंगली में स्याही लगाई जाती है, वैसे ही बैंकों में नोट बदलने के लिए भी स्याही लगाने की सुविधा का इस्तेमाल किया जाएगा। ये थे शक्तिकांत दास के शब्द। लेकिन नोटों के विमुद्रीकरण से जनता को हो रही भारी परेशानी का हवाला देकर सरकार के खिलाफ मोर्चा खोलने जुटे विपक्ष ने इस फैसले की भी आलोचना की है। इस फैसले पर सीपीएम नेता सीताराम येचुरी ने कहा,
अगर ऑल्टरनेट अरेंजमेंट्स का नहीं किया तो लोगों को इस तरीके से मतलब दिक्कतों में उलझन में क्यों डाल रहे हो? अगर आप इंक लगाओगे, हमसे कहा गया कि 4,000 रुपए हम हर हफ्ते निकाल सकते हैं, तो इंक लगाएंगे आप तो हफ्ते में ये इंक गायब हो जाएगी क्या? ये तो तुगलक राज चल रहा है।
आज सर्वोच्च न्यायालय ने भी नोटबंदी के खिलाफ एक जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए सरकार के इस फैसले पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है। हालांकि न्यायालय ने कहा कि 25 नवंबर तक केंद्र सरकार एक हलफनामा दाखिल करके ये बताए कि सरकार इस मामले में ऐसे क्या कदम उठा रही है जिससे लोगों को परेशानी न हो। न्यायालय ने सरकार से ये भी पूछा कि बैंकों से पैसा निकाल सकने की सीमा क्यों नहीं बढ़ाई जा रही है। दूसरी तरफ कल शुरू हो रहे संसद के शीतकालीन सत्र से पहले विपक्षी दलों ने सरकार को घेरने के लिए रणनीति बनाने को लेकर लगातार दूसरे दिन आज बैठक की है। उधर कांग्रेस के वरिष्ठ नेता कपिल सिब्बल ने एक संवाददाता सम्मेलन में मोदी सरकार के इस फैसले की कड़ी आलोचना की है।
आपको मालूम है कि बस्तर में 20 किलोमीटर चल के एक आईसीआई की बैंक ब्रांच है, आईसीआईसीआई, और एक एटीएम है। 20 किलोमीटर चल के बस्तर के लोग वहां पहुंचे, 2 घंटों में सारी राशि खत्म हो गई। अब वो वापस भी नहीं जा सकते 20 किलोमीटर, 3 रात से वहां वो बैठे हुए हैं और पैसा पहुंचा नहीं है और उनके परिवार के पास खाने के लिए पैसा नहीं। ये आम आदमी चैन की नींद सो रहा है नरेंद्र मोदी जी के हिसाब से।
उधर नोटबंदी के बाद पैदा हुए हालातों के चलते बुलाया गया दिल्ली विधानसभा का विशेष सत्र भी हंगामेदार रहा। यहाँ मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ आरोपों की झड़ी लगा दी। केजरीवाल के भाषण के दौरान लगातार हंगामा कर रहे विपक्ष के नेता विजेंद्र गुप्ता को स्पीकर ने मार्शलों के जरिए बाहर करा दिया। उधर विपक्ष के आरोपों का जवाब देते हुए भाजपा के नेता अर्जुन मेघवाल ने कहा कि ये फैसला जनता की सहायता के लिए है।
करेक्टिव मेजर लिए जा रहे हैं, पैनिक क्रिएट करने की जरूरत नहीं है, सफिशिएंट मनी है जनता को रिलीफ देने के लिए। लगातार हम समीक्षा कर रहे हैं और जनता को रिलीफ दिलाएंगे। बहुत अच्छी स्कीम है और जनता इसका स्वागत कर रही है।
इधर शीतकालीन सत्र से पहले हुए सर्वदलीय बैठक में प्रधानमंत्री मोदी ने काले धन के खिलाफ एकजुट होने और संसद के शीतकालीन सत्र को सुचारू रूप से चलाने के लिए सभी पार्टियों से सहयोग की अपील की है।
रिपोर्ट सुना रहे थे विनीत खरे। 500 और 1000 के नोट अचानक बंद होने से यूं तो हर व्यक्ति परेशान और हैरान दिख रहा है, लेकिन गांवों में किसानों को इसकी मार शायद ज्यादा झेलनी पड़ रही है। ये समय एक तरफ फसलों की बुआई का है तो दूसरी ओर शादियों का भी। दोनों ही कामों में पैसे चाहिए। पैसे हैं भी, लेकिन उन्हीं नोटों में हैं जिन्हें चलन से बाहर कर दिया गया है। ऐसे में उन पर क्या बीत रही है, ये जानने की कोशिश की समीर आत्मज मिश्र ने।
लखनऊ जिले के मोहनलालगंज इलाके में एक बैंक के बाहर लंबी कतार में खड़ी इस महिला का शायद धैर्य जवाब दे गया है। पता चला कि पिछले 3 दिन से ये अपना पैसा जमा कराने बैंक में आ रही थीं, लेकिन जमा करा नहीं पाई। यहाँ ज्यादातर आसपास के गांव के किसानों के खाते हैं और लाइन में भी यही लोग लगे हैं। यहीं पर एक किसान दिनेश सिंह से हमारी बात हुई।
खेत में साहब खाद बीज के लाने पैसे भी नहीं है, हम 4 दिन से यहाँ चक्कर लगाया सब, हम लोग गरीब आदमी ने वही 4-5 हज़ार रुपए है वो क्या है।
ये हाल सिर्फ यही का नहीं बल्कि राज्य के अन्य हिस्सों का भी है, खासकर ग्रामीण इलाकों का। ग्रामीणों का कहना है कि रोजमर्रा की जरूरतें वैसे तो पूरी हो जाती, लेकिन खेती के लिहाज से ये अहम समय है। झांसी जिले के मऊरानीपुर के कुछ किसानों ने अपनी व्यथा कुछ इस तरह सुनाई।
ये लोग पैसा नहीं कर रहे हैं, हमारी मोबाइल बिल्कुल ऐसी रही, 4 दिन बना रहा है, होगा साहब सुबह से आ जाते ही बिना खाए तो ये के जनों की अपनी खेती बच जाए। 1500 के नहीं है पेट्रोल पंप,
किसानों के सामने समस्या ये भी है कि खेती के काम को छोड़कर वो दिन भर बैंकों और एटीएम के बाहर लाइन में भी नहीं लग सकते। किसान दीपक सिरोही बताते हैं,
जैसे किसानों का काम है, किसान खेत में काम करें या बैंक में लाइन में लगें, क्योंकि इस टाइम बुआई का काम चल रहा है, उनका पलेवा चल रही है, उनका खेत का काम इतना फैला रहता है। अब किसान खेत का काम छोड़ के और बैंक में सुबह से लेकर शाम तक लाइन में लगे, किसान के लिए कुछ छूट होनी चाहिए।
उत्तर प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में धान की इस बार अच्छी फसल हुई है, लेकिन किसान उसकी खुशी नहीं मना पा रहा है। इलाहाबाद के एक किसान दिलीप मौर्या कहते हैं कि इस बार मौसम मेहरबान रहा तो धान की बम्पर फसल हुई, लेकिन सरकार को शायद किसानों की ये खुशी नहीं देखी गई। किसान नेता शिव नारायण सिंह परिहार,
किसान इसलिए परेशान हो रहा है कि उसकी खेत में पानी लगा है और खाद चाहिए और खाद उसको मिल नहीं पा रहा, कारण उसके पास फुटकर पैसे नहीं है और वो बदलवाने बैंक जा रहा है तो चार चार दिन से चक्कर लगा रहा, उसके पैसे नहीं बदल पा रहे थे। दूसरी बात ये सर की जो सहकारी समिति होती है जहाँ पे खाद बीज मिलता है तो वहाँ भी समिति में 1,500 रुपए से लोन नहीं लिए जा रहे हैं, प्राइवेट दुकानों पे 1,500 के नोट नहीं ले रहे हैं और जिनके खाते हैं सर उनको पिछला जो उन्होंने बकाया था जिन किसानों ने वो बकाया चुका दिया है उन्हीं को वो खाद दे रहे हैं।
इस समय गेहूं, सरसों, मटर और आलू की मुख्य रूप से बुआई होती है। किसानों के मुताबिक अगर खाद डालने में 10 दिन की भी देरी हो जाएगी तो सरसों की फसल में कीड़े लग जाएंगे। गाँव में बैंकों की संख्या वैसे भी कम है, आमतौर पर कस्बों या फिर शहरों में ही बैंक है और वहाँ भी सीमित मात्रा में ही नकदी आ रही है। कतार में खड़े होने के बावजूद कोई गारंटी नहीं है कि कैश मिल ही जाएगा। वहीं दुकानदारों का कहना है कि उनके पास भी खुले पैसे नहीं बचे हैं, जो थे वो खत्म हो गए, इसी वजह से वो चाह कर भी किसानों की मदद नहीं कर पा रहे हैं।
दुकानदारी पे सबसे ज्यादा असर पड़ा क्योंकि लोग यहाँ पे पुराने नोट लेकर आ रहे हैं, पुराने नोट बंद हो गए हैं तो नए नोट के लिए हम कह रहे हैं तो वो कह रहे हैं हमारे पास नहीं है, क्योंकि बैंक में भी ज़्यादातर भीड़ लगी हुई है तो वहाँ भी किसी के नहीं हो पा रहे हैं तो वो हमें कुछ नए दे रहे हैं, कुछ पुराने दे रहे हैं, तो इससे फिर हम बाकी को कुछ दे रहे हैं कि भाई चलो हम अपने तुम रिस्क पर दे सकते हैं, चलो कुछ दिन के लिए आप नहीं कर पा रहे हो अटेंड।
हालांकि बैंक अधिकारी और प्रशासनिक अधिकारी लगातार संयम बरतने और धैर्य रखने की अपील कर रहे हैं और लोगों के मुताबिक बैंक के कर्मचारी मनमानी भी कर रहे हैं। वहीं कुछ किसानों का कहना है कि खाद और बीज तो उन्हें सोसाइटी के जरिए उधार भी मिल जाएंगे, लेकिन घर के दूसरे खर्च के लिए पैसे कहां से लाएं। समीर आत्मज मिश्र, BBC लखनऊ।
ये तो हुई गांवों और किसानों की बात, लेकिन शहरों में जहां बड़े पैमाने पर प्लास्टिक मनी यानी डेबिट या क्रेडिट कार्डों का इस्तेमाल होता है और लोग इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट सिस्टम का प्रयोग करते हैं, वहाँ भी हालात अच्छे नहीं हैं। कई कई घंटे खड़े होने के बाद भी लोगों को नकदी नहीं मिल पा रही है। ATM मशीनों, बैंकों और डाकघरों के आगे लंबी लंबी कतारें लगी हुई हैं। BBC संवाददाता नितिन श्रीवास्तव और विदित मेहरा दिल्ली में रिजर्व बैंक के दफ्तर गए तो वहाँ क्या नज़ारा था, सुनिए उन्हीं की जुबानी।
500 और 1,000 रुपए के नोटों के बैन और उसके बाद की दिक्कतें अभी भी बरकरार हैं। आज 7वां दिन है जब से इस बात का अनाउंसमेंट हुआ था कि वो नोट बैन किए जाएंगे और उसके बाद नई करेंसी रोल आउट होगी। हम लोग इस वक्त सेंट्रल दिल्ली में हैं और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का दफ्तर है और ये देखिए ये लाइनें जो है यहाँ से ये करीब 0.5 किलोमीटर आगे गई है। लोगों का यहाँ पर ये कहना है, मुझे कई लोगों ने बताया,
एक लेडी सुबह से आई थी 7 बजे से, उनकी ज्यादा हालत सीरियस हो गई तो घर पे वापस जा रही हूं। तो आगे
वो सुबह 7 बजे से लाइन में खड़ी थी। बहुत सारे किस्से लोगों के पास, आप लोग बताइए आप कहाँ से आए हैं, कब से खड़े हैं, क्या है आपके हाथ में?
मैं साउथ दिल्ली से आया हूँ और वहाँ पे बैंकों में बहुत भीड़ थी, मुझे लगा यहाँ खाली होगा। सुबह 7:30 पे खड़े थे वहाँ पीछे से, अब वहाँ कोने तक आए, आप सोचो कोने से यहाँ 1 किलोमीटर लगा, इतना लंबा। अब क्या बोले सर, भूखे पे ऐसे हैं, सुबह चाय पी के निकले, चाय पापे खा के निकले।
आप कब से खड़े हैं यहाँ पे?
4:30 बजे आए सवेरे घर से।
सुबह 4:30 बजे
सुबह 4:30 बजे घर से चले, 6 बजे यहाँ
आए। आपके फोन में बैटरी बची है, खत्म हो गई?
नहीं, वो तो खैर है क्योंकि मैं भी वीडियो बना था, 7 बजे आके मैंने भी अपने दोस्तों को सेंड करी।
क्या लग रहा है नंबर कब आएगा?
नंबर नहीं आ रहा, मैं जा रहा हूँ, मुझे को लग रहा है कि 5 बजे तो एंट्री होगी जाके हमारी, जो मैं जहाँ 6 बजे का आया हूँ फिर भी मैं वापस जा रहा हूँ।
कईयों ने तो मुझे ये भी बताया कि हम जूस पैक लेके घूम रहे हैं, बैटरी रन आउट कर रही है, FM सुने जा रहे हैं। सर आप क्या कर रहे हैं?
गेम खेल रहे हैं और क्या करते हैं?
अच्छा गेम खेल रहे हैं।
सुबह 7 बजे के आए हुए हैं हम यहाँ पर।
और अगर आपको कहीं जाना हो, मतलब इधर उधर टॉयलेट वॉयलेट के लिए जाना हो, तो क्या किसी को रोक के जाते
हैं?
सामने एक सुलभ शौचालय पब्लिक टॉयलेट है,
पब्लिक
वहाँ पर लाइन लगी, कितनी देर में वहाँ पर नंबर?
अगर पेशाब करने अभी जाएंगे तो 15 मिनट बाद नंबर आएगा पेशाब करने का।
आप बताइए आप कितने बजे आए थे यहाँ?
सुबह 4:30 बजे से लाइन में लगा, अभी तक नंबर का पता नहीं है। परेशानी हुई है, नाश्ता करके आए ना, कुछ खाना पीना।
और पास में पैसे कितने?
पैसे ही तो नहीं है मसला, तो ये सिवाय से लाइन में लगे पड़े सुबह से 10-20 रुपए यहाँ पड़े बस।
तो अगर कुछ खाने का मन हो, आप खाने का समय पौने दो हो रहा
है। 1 समोसा मिल रहा है यहाँ पे, हम गरीब आदमी 18 रुपए का समोसा कैसे खाएंगे?
18 रुपए का एक समोसा।
ये जबकि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का दिल्ली का मेन ऑफिस है, यहाँ पर लोगों की सहूलियत के लिए एक सीनियर सिटीजन के लिए लाइन अलग लगी है। और ये लेडीज की लाइन है, कितनी देर से हैं आप यहाँ पर?
2 घंटे से ऊपर हो गए
जी। 2 घंटे?
3-4 घंटे हो गए।
4 घंटे हो गए?
3 से 4 घंटे हो गए आप
जी। हाँ।
और क्या उम्मीद लग रही है माता जी? आप
बताएं मैम कि आप खाना बना के आती हैं?
4 बजे उठते हैं, खाना बना के तभी आते हैं।
फिर दिन का खाना, रात का खाना?
दिन का खाना तो मिस ही हो जा रहा है ना,
दिन का खाना मिस हो जा रहा है।
सर मोदी जी ने तो बोला था जिसकी शादी है उसको पैसे मिलेंगे स्पेशल से, बट हमारी बहन की शादी है कल।
आपकी बहन की शादी है?
हाँ जी सर, कल है।
किस तारीख को है?
कल है।
कल आपकी बहन की शादी है?
हाँ जी।
कहाँ पे रहते हैं आप दिल्ली में?
मैं दिल्ली जोरबाग। मेरे को सिर्फ 50,000 चैन जोर है 6 दिनों में, ताकि 3-4 लाख रुपए शादी में लगते हैं, आपको अच्छा भला पता है। बट ये है कि किसी ने वो न्यूज वाले बोल रहे थे कि मोदी जी का ऐलान है कि मतलब शादी का कार्ड लेके जाओ, वहाँ तुम्हें पैसे एक्सचेंज हो जाएंगे, बट वहाँ अंदर जाके वो बोल रहे हैं हमें कोई मतलब नहीं है।
अब शादी में अब कैसे करेंगे आप, कैसे क्या एग्जाम?
वो उतने का ही करेंगे जो भी है, टेम्परेली करना पड़ेगा वो अगले महीने, 2 महीने 4 महीने जब भी होगा।
मेरी टिम्बर की दुकान है और कल मैंने 110 रुपए कमाए, और जिसमें जो है उनका मेरा जमा का काम है, से 1,000 रुपए जमा तो 100 रुपए या 50 रुपए कमाता हूँ, तो उनके लिए चेंज के लिए पैसे कहाँ से लाया जाए?
जी मैं सुबह से लगी हुई हूँ यहाँ लाइन में, और मेरा बच्चा इतना रोया यहाँ पे लाइन के मारे, इतना रोया सुबह से, 3 दफा मेरा बच्चा पिट भी चुका है रोने के चक्कर में।
इन सारी अफरा तफरी के बीच विपक्षी दलों ने साथ मिलकर सरकार को घेरने की तैयारी शुरू कर दी है। आज इस मामले में विपक्षी दलों की एक बैठक भी हुई। बीबीसी संवाददाता जुबैर अहमद लगातार इस पर नजर रखे हुए हैं। आपसे कुछ ही देर पहले मैंने उनसे पूछा कि विपक्षी दल इस पूरे परिदृश्य में कहाँ हैं।
देखिए आज उनकी एक बैठक हुई, काफ़ी पार्टीज एक साथ शामिल थी उसमें। उसका ऐसा लग रहा है कि उसका नेतृत्व वेस्ट बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने किया था, क्योंकि वो कल से ही काफ़ी इस पर बयान दे रही हैं। लेकिन अब तक जो विपक्ष का रुख रहा है वो बयानबाजी से आगे नहीं बढ़ पाया है। लोगों ने कोई प्लान ऑफ एक्शन अपना नहीं बताया है कि इसका विरोध कैसे करेंगे। ये उनके लिए एक बड़ी समस्या भी है, क्योंकि ये काले धन के खिलाफ जो कार्रवाई सरकार कर रही है वो आम जनता में, ज़्यादातर लोग इसको कह रहे हैं कि ये सही कदम उठाया सरकार ने, इसके खिलाफ विपक्ष भी नहीं जाना चाहेगी। और कई लोगों ने कहा भी है, कई पार्टियों ने, कि ये वो भी इसके ख़िलाफ़ हैं, वो भी काले धन के ख़िलाफ़ हैं। लेकिन आगे क्या वो हो, वो ये सिर्फ ये कहते हैं कि जिस तरह से सरकार इम्प्लीमेंट कर रही है वो गलत है। अब जो ये एक्शन इन्होंने तय किया है वो ये कि कल वो राष्ट्रपति से मिलने जा रहे हैं, उसमें कई विपक्ष के नेता होंगे और सांसद होंगे। और मुझे ये भी पता चला है कि शिवसेना जो एनडीए सरकार में शामिल है उसका भी प्रतिनिधित्व उसमें होगा, लेकिन इसकी पुष्टि अभी पार्टी ने नहीं की, लेकिन इसका विरोध ज़रूर किया है इन्होंने।
इस बीच में आज सरकार ने एक सर्वदलीय बैठक भी बुलाई थी, उस बैठक में जो शायद अभी चल ही रही है, उसमें क्या कुछ कहा सुना गया है, कुछ पता चला है?
देखिए बैठक तो अभी जैसा कि आपने कहा कि जारी है, लेकिन हमें पता था कि ये बैठक पहले से तय थी। जब नोटों पर पाबंदी लगाई गई 8 तारीख को, जब प्रधानमंत्री ने इसका ऐलान किया, उसके पहले ही से ये बैठक तय थी, क्योंकि ये आमतौर से जब भी कोई पार्लियामेंट का नया सेशन शुरू होता है, नया सत्र जब शुरू होता है, उसके पहले रणनीति सरकार तय करना चाहती है, विपक्ष के दलों से एक तरह से सहमति चाहती है कि वो बिल जो पास कराना चाहती है सरकार वो पास आसानी से हो जाए। लेकिन चूँकि एक नया मुद्दा खड़ा हुआ है, तो जाहिर है ये विपक्ष के नेताओं ने भी और सरकार की जो पार्टी है बीजेपी, इसने भी कहा है कि ये भी एक मुद्दा इसमें, इस पर भी चर्चा होगी, और हो सकता है कि विपक्ष जो है ये कुछ कंसेशन लेना चाहे इसमें। अगर ऐसा नहीं हुआ तो जब पार्लियामेंट का सेशन कल से शुरू होगा, तो ऐसा अगर नहीं हुआ तो हमें ये पता चला है कि विपक्ष की अब तक जो रणनीति बनी है वो ये कि सरकार को राज्यसभा में घेरा जाए, क्योंकि राज्यसभा में सरकार का बहुमत नहीं है, तो वहाँ पर इसका वो कड़ा विरोध करने जा रहे हैं। और इसीलिए सरकार चाहती है कि ये जो कदम सरकार ने उठाया है काले धन के खिलाफ, और इसमें जो अड़चन जो आ सकता है विपक्ष के हवाले से, तो उसमें विपक्ष को अपने साथ लेने की सरकार पूरी कोशिश करेगी।
तो विपक्ष जो है वो सरकार को घेरने की तैयारी में है, जानकारी दे रहे थे बीबीसी संवाददाता जुबैर अहमद। भारत के रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर ने एक दिन पहले कहा कि नोटबंदी के कारण अलगाववादी गतिविधियों पर भी रोक लग गई है, इसलिए भारत प्रशासित कश्मीर में फिलहाल पथराव और विरोध प्रदर्शन नहीं हो रहे हैं। कश्मीर के लोगों ने इस बयान पर सधी हुई प्रतिक्रिया जताई है। इस बीच ये भी खबर आ रही है कि राज्य की बोर्ड परीक्षा में विद्यार्थी पूरे मन से हिस्सा ले रहे हैं। सुनिए श्रीनगर से रियाज मसरूर की रिपोर्ट।
घाटी में जारी अलगाववादियों का आंदोलन अब पांचवें महीने में है। हालांकि निजी गाड़ियां बंद के बावजूद चलती हैं और कुछ इलाकों में दुकानें भी खुलने लगी हैं, लेकिन बंद का असर अब भी है। ऐसे में लोगों का कहना है कि जब से पैलेट गन या फायरिंग के कारण मृत्युओं पर रोक लग गई है, तब से ही स्थिति में सुधार देखने को मिला है। कुछ लोग तो मानते हैं कि आतंकवाद पर नोट बदली से रोक लग सकती है, परंतु अधिकतम लोगों का कहना है कि पथराव को आतंकवाद से जोड़कर भारत सरकार गलती कर रही है। ऐसे ही कुछ लोगों की प्रतिक्रिया।
आई टोटली एग्री विद दिस, ये टेररिज्म को अफेक्ट करेगा। फंडिंग नहीं हो पाएगा, जो फ्रॉम फॉरेन फंडिंग होता था वो अब बंद हो जाएगा, बिकॉज द करेंसी हैज चेंज, और जितना भी इनके पास पैसा है जो वेपन्स और एमिनेशंस में यूज़ करते थे वो तो वेस्ट हो जाएगा अब, तो इट विल अफेक्ट द टेररिज्म एंड कहीं ना कहीं हालात कश्मीर में सुधर जाएंगे।
मेरा नाम सुमैरा और मैं सेकेंड ईयर में पढ़ती हूँ। जो डिफेंस मिनिस्टर के जो स्टेटमेंट्स आए हैं उससे समहाउ टेररिज्म कम हो जाएगा कश्मीर में, लेकिन जो स्टूडेंट पैल्टिंग वो कम नहीं हो सकती है जब तक कि कश्मीर का मसला हल नहीं होगा। अगर ये कह रहे कश्मीर इज इंटीग्रल पार्ट ऑफ इंडिया, तो इनको चाहिए कि कश्मीर के लोगों की बात सुने और उस पर अमल दरामद करे, ताकि कश्मीरी नौजवान बार बार इस पैलेटिंग जो ये पैलेट्स वगैरह इनकी इनसे मतलब उनको सामना न करना पड़े।
कई लोगों का मानना है कि आतंकवाद एक वैश्विक समस्या है, लेकिन कश्मीर में हिंसा पथराव और अस्थिरता को ठीक करने के लिए भारत सरकार को यहाँ के युवकों के क्रोध को समझना होगा।
मेरा नाम सना है, मैं स्टूडेंट हूँ। हाँ, किसी हद तक टेररिज्म कम होगा, लेकिन जो ये स्टोन पेल्टिंग को आप रिलेट करते हैं इसके साथ, ये बहुत गलत है, क्योंकि यहाँ पे जो लड़के स्टोन पेल्टिंग करते हैं वो उनका वो एंगर है, उसके पीछे एक रीज़न है, वो आप मतलब इंटेग्रेट इसके साथ नहीं कर सकते हैं, पैसों के साथ वो फंड नहीं लेते, वो स्पॉन्सर नहीं है। सो इन दैट वे इट्स वेरी रॉन्ग कि आप उसको बहुत एक पोर्ट्रे डिफरेंट इस फ्रेम में पोर्ट्रे कर रहे हैं।
मेरा नाम साहिब जलाली है, मैं श्रीनगर से हूँ। इस बारे में तो हम नहीं कुछ कह सकते, लेकिन ग्राउंड रियलिटी पे हम ये कह सकते हैं कि ये जो स्टोन पेल्टिंग वगैरह होती है ये एट्रोसिटीज़ की वजह से होती है। अगर यहाँ पे पैसे की बुनियाद पे ये नहीं होता है, एट्रोसिटीज़ अगर बंद हो जाती है तो ये बंद हो सकता है, इसका पैसे के साथ कोई लेना देना नहीं है। जिस किसी का भाई जख्मी होता है वो तो स्टोन पेल्टिंग पे उतर आएगा, अगर वो सब रुक जाए तो मुझे लगता है ये स्टोन पेल्टिंग रुक सकती है।
गौरतलब है नोटबंदी से पूरे भारत में हाहाकार मची हुई है, परंतु कश्मीर में इस तरह का पैनिक नहीं है। यहाँ चार महीनों के बंद प्रतिबंधों, गिरफ्तारियों और 100 लोगों के मारे जाने के बाद जीवन जैसे ठहर सा गया है। व्यापारियों का कहना है कि लगातार बंद और कर्फ्यू के कारण 18,000 करोड़ रुपए का खसारा रिकॉर्ड किया गया है। याद रहे 8 जुलाई को पुलिस एनकाउंटर में चरमपंथी कमांडर बुरहान वानी की मृत्यु के बाद अलगाववादियों ने भारत विरोधी आंदोलन शुरू किया था, जिसके तहत लगातार शिक्षक और व्यापारी गतिविधियां ठप हैं। प्रशासन ने परीक्षाओं को पोस्टपोन न करने का निर्णय लिया तो 10वीं और 12वीं कक्षाओं के 1 लाख से अधिक छात्रों ने परीक्षा में बैठने का निर्णय लिया। रियाज मसरूर, बीबीसी श्रीनगर।
सनसनी नहीं, विश्वसनीयता का दम, बीबीसी हिंदी।
ये बीबीसी रेडियो है और आप सुन रहे हैं दिनभर निखिल रंजन के साथ। तो आइए अब कुछ दूसरी खबरों का रुख करते हैं। करीब 2 दशक पहले हुए बिहार के सेनारी नरसंहार में 34 लोगों की हत्या कर दी गई थी। इस मामले को रेयरेस्ट ऑफ रेयर मानते हुए जहानाबाद की जिला अदालत ने आज दोषियों को सजा सुनाई है। अदालत ने 10 दोषियों को फांसी की सजा सुनाई है। इन 10 लोगों सहित कुल 15 को इस मामले में 27 अक्टूबर को दोषी पाया गया था। सजा सुनाए जाने के बाद बचाव पक्ष के वकील और पीड़ित परिवारों की क्या प्रतिक्रिया है, सुनिए पटना से मनीष शांडिले की रिपोर्ट में।
18 मार्च 1999 की रात हुए इस नरसंहार में जहानाबाद जिले के सिनारी गांव में एक खास अगड़ी जाति के 34 लोगों की गला रेतकर हत्या कर दी गई थी। उस समय इस नरसंहार में प्रतिबंधित संगठन माओवादी कम्युनिस्ट सेंटर को शामिल माना गया था। इस मामले के करीब 17 साल बाद बीते महीने 27 अक्टूबर को जहानाबाद जिला अदालत ने मामले के 38 अभियुक्तों में से 15 लोगों को दोषी पाया था। सजा के बिंदु पर सुनवाई के लिए अदालत ने आज की तारीख मुकर्रर की थी। आज दोपहर करीब 3 बजे तृतीय अपर एवं जिला सत्र न्यायाधीश रंजीत कुमार सिंह ने दोषी पाए गए 15 में से 13 लोगों की सजा मुकर्रर की। अदालत के आज के फैसले के बारे में लोक अभियोजक सुरेंद्र प्रसाद सिंह ने बताया,
यह केस जो है रेयर ऑफ रेयरेस्ट केस के अंतर्गत आता है, उसमें 10 लोगों को मृत्यु दंड की सजा सुनाई गई। तीन जो है अभियुक्त जो 38 वर्ष है अभी, यानी उस समय मात्र लगभग 20 वर्ष की उम्र का होगा, ऐसी स्थिति में उन्हें सुधार की संभावना प्रतीत होती है। ऐसी स्थिति में तीन को, विनय पासवान, अरविंद यादव, मुकेश यादव को आजीवन कारावास एवं 1,00,000 रुपए का अर्थदंड सुनाया गया।
जिन 15 लोगों को अदालत ने दोषी पाया है उनमें से 2 अब तक फरार हैं। गिरफ्तारी के बाद ही अदालत उनकी सजा का ऐलान करेगी। बचाव पक्ष के प्रमुख वकील किशोरी लाल सिंह ने कहा है कि निचली अदालत के इस फैसले को चुनौती दी जाएगी, उन्हें हाईकोर्ट से उम्मीद भी है।
मेरा कहना है कि जो लोग भी के सजा सुनाई गई है यहाँ फर्स्ट टाइम नहीं दे पाए, और कोर्ट में फॉर द फर्स्ट टाइम 10-12 बरस के बाद आइडेंटिफिकेशन प्रॉपर नहीं होता है, बहुत सा न्यायालय का इस तरह का डिसीजन है, और सिंगल जो इनका आइडेंटिफिकेशन है वह उन लोगों को श्योर है कि दे विल गेट एंट्री फ्रॉम द ऑनरेबल हाईकोर्ट, हमारी उम्मीद है।
इस नरसंहार में मृत्युंजय कुमार ने अपना पिता खोया था, वे अदालत के फैसले से असंतुष्ट हैं।
जितने भी अपराधियों के विरुद्ध आरोप पत्र दाखिल किया गया था उसमें अधिकांश को बरी कर दिया गया, तो ये कहीं न कहीं पुलिस के द्वारा जो आरोप पत्र दाखिल किया गया उसमें या तो खामियां हैं और सरकार के द्वारा भी रुचि नहीं ली गई, उसके द्वारा संवेदनहीनता का प्रदर्शन किया गया, तो इसमें इस दरमियान में 18 साल का वक्त बीत जाना ये बहुत बड़ा चैलेंज है न्याय प्रक्रिया के लिए।
सिनारी गाँव के ही मंटू शर्मा के भाई की हत्या इस नरसंहार में कर दी गई थी। उनका कहना है कि गांव वाले फैसले के बाद असुरक्षित महसूस कर रहे हैं।
वो है सर कि इस गांव में पुलिस बल उसी समय से हटा लिया, उठ के 1-2 दिन के बाद हटा लिया गया, अभी तक पूरा गांव भयभीत है, अभी तक कोई भी सुरक्षा अपने आप को महसूस नहीं कर रहा है, असुरक्षित महसूस कर रहा है पूरे गांव में, असुरक्षित महसूस कर रहा है कि इस जैसे अगल बगल के गांव है कोई भी गांव में आदमी नहीं, मतलब दूसरे जाति का आ रहे हैं, न धान कट रहा है हम लोग के, न कुछ हो रहा है, अपने आप को असुरक्षित महसूस हम लोग कर रहे हैं।
सिनारी नरसंहार से ही जुड़े एक दूसरे मामले में जहानाबाद व्यवहार न्यायालय ने दुखन कहार को 10 नवंबर को दोषी करार दिया था। वे इस मामले के एकमात्र अभियुक्त हैं। अदालत इस मामले में शुक्रवार 18 नवंबर को सजा पर सुनवाई करेगी। मनीष शांडिल्य, BBC पटना।
और आइए अब सुनते हैं खेल समाचार। खेल समाचारों के साथ आदेश कुमार गुप्त स्टूडियो में आ चुके हैं। आदेश जी, क्या कुछ है आज?
जी, दक्षिण अफ्रीका ने बेहद शानदार प्रदर्शन करते हुए होबार्ट में खेले गए दूसरे टेस्ट मैच में आज ऑस्ट्रेलिया को चौथे ही दिन एक पारी और 80 रन से करारी मात दी। पहली पारी के आधार पर 241 रन से पिछड़ने वाली ऑस्ट्रेलिया की दूसरी पारी आज केवल 161 रन पर ढह गई। आज 2 विकेट पर 121 रन से आगे खेलते हुए ऑस्ट्रेलिया के बल्लेबाज दक्षिण अफ्रीका के तेज गेंदबाज कायल एबट और कैगिसो रबाडा की तूफानी गेंदों का सामना नहीं कर सके। जैसे तैसे अगर कुछ बल्लेबाजों ने अपना योगदान दिया तो उनमें डेविड वार्नर थे जिन्होंने 45 रन बनाए थे, उस्मान ख्वाजा ने 64 और कप्तान स्टीव स्मिथ ने 31 रन बनाए, लेकिन बाकी बल्लेबाज दहाई के अंक को भी नहीं छू सके। एबट ने 77 रन देकर 6 और रबाडा ने 34 रन देकर 4 विकेट हासिल किए। इससे पहले ऑस्ट्रेलिया की पहली पारी केवल 85 रनों पर समाप्त हुई थी, जिसके बाद दक्षिण अफ्रीका ने 326 रन बनाए थे। इस जीत के साथ ही दक्षिण अफ्रीका ने 3 टेस्ट मैचों की सीरीज में 2-0 की अजय बढ़त बना ली है। उधर इंग्लैंड की महिला क्रिकेट टीम ने कोलंबो में खेले गए 30 एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच में आज मेज़बान श्रीलंकाई महिला क्रिकेट टीम को 5 विकेट से हरा दिया। इंग्लैंड के सामने जीत के लिए 162 रनों का लक्ष्य था, जो उसने सलामी बल्लेबाज टैमी ब्यूमोंड के 78 और फ्रेन विल्सन के 30 रन की मदद से 29.3 ओवर में 5 विकेट खोकर हासिल कर लिया।
बहुत शुक्रिया आदेश कुमार गुप्त खेल समाचारों के लिए। और अब कार्यक्रम अपनी समाप्ति की ओर है, तो आइए सुन लेते हैं प्रमुख समाचार एक बार फिर।
बीबीसी समाचार। 500 और 1,000 के नोट को बदलने वालों की उंगली पर जल्द न मिटने वाली स्याही लगाई जाएगी, आर्थिक मामलों के विभाग के सचिव शशिकांत दास ने ये जानकारी दी। कल से शुरू हो रहे संसद के शीतकालीन सत्र से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सभी दलों से संसद के अंदर और बाहर काले धन के मुद्दे पर एक साथ आने की अपील की। हांगकांग में एक अदालत ने आज़ादी के समर्थक 2 सांसदों की सदस्यता को आधिकारिक तौर पर अयोग्य करार दिया है। روس کے آرتھک وکاس منتری الیکسی یوسلے کائف نے رشوت لینے کے آروپ سے انکار کیا ہے. انہیں رشوت لینے کے ایک معاملے میں گرفتار کر لیا گیا ہے. جرمنی میں پولیس نے ایک اسلامک گٹ کے خلاف نفرت پھیلانے کے آروپ کی جانچ کے سلسلے میں قریب 200 اپارٹمنٹ اور دفتروں سمیت 2 مسجدوں پر چھاپے مارے ہیں. مصر کی اچ عدالت نے پورو راشٹرپتی محمد مرسی کی پھانسی کی سزا روک کر دوبارہ مقدمہ چلانے کا آدیش دیا.
प्रमुख समाचार सुनाया हरिता कांडपाल ने और आज स्टूडियो संभाल रहे हैं हेमंत कुशवाहा. आपसे 1.5 घंटे बाद घटना चक्र में दोबारा मुलाकात होगी. निखिल रंजन को सभी साथियों संग दीजिए अनुमति. नमस्कार.